अब अगली दुआ में ज़रा इब्राहिम की दुआएं तो सुनिए और देखिए कि इब्राहिम की चॉइस कितनी खूबसूरत थी। इतनी तारीफें की रब की, सारे नाम देख लीजिए और मांगा क्या, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें। कैसे? आज दुआ मांगना भी सीखते हैं और अल्लाह हमें ये सब दुआएं मांगने वाला और ये सारी दुआएं हमारे हक में कबूल हो जाएं, हम इसकी दुआ करते हैं। क्या फरमाया? रब्बी हबली हुक्मन, ऐ मेरे रब मुझे हिकमत अता फरमा। हुक्म मांगा, पहले तो लफ्ज़ हब से लिख लीजिए, अल्लाह का नाम अल वहाब, अता फरमाने वाला। मेरा रब वो है जो मुझे अता करता है। सूरत आल इमरान में हम पढ़ चुके हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो अल्लाह तआला का प्यारा नाम अल वहाब। क्या मांगा? वहाब से हुक्मन, हिकमत मांगी, और वल्हिकनी बिस्सालिहीन, और सोहबते खैर मांगी, सोहबते सालिहीन मांगी, नेक लोगों के साथ मेरा मामला अच्छा हो जाए। पहली बात देखिएगा, हुक्म से क्या मुराद है? बस फौरन कह देंगे इससे मुराद नबुवत है, तो लिख लीजिए कि यहाँ इससे मुराद नबुवत नहीं है। नबुवत तो मिली हुई थी जिस वक्त ये दुआएं कर रहे थे। यहाँ हुक्म से मुराद है मजीद हिकमत, ज़िंदगी गुजारने का खूबसूरत तरीका, वो तरीका कि जिस पे चलूँ तो बस मेरी ज़िंदगी खूबसूरत आए। नबुवत के बाद अब फैसले। और दूसरी बात है कि नबुवत मांगने वाली चीज़ नहीं है, ये वहबी है। वहबी होती है और एक कस्बी होती है, लिख लें जल्दी से। नेमतें दो किस्म की हैं, एक वो जो हम मांगते हैं तो मिलती हैं, दौलत माल औलाद जो भी है दुनिया की चीज़ें, इसको कहते हैं हमने अल्लाह ताला से मांगी, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कस्बी। ठीक है, कस्बी, कसब से कमाना, कभी मेहनत करते हैं तो कामयाब होते हैं। लेकिन कुछ नेमतें ऐसी हैं जो अल्लाह खुद ही दे देता है, उसको वहबी कहते हैं। मस हमारी शक्लो सूरत, कद काठ, अच्छे घर में पैदा होना, दौलतमंद होना बचपन से ही, ये हमने मांगी तो नहीं थी ना, माँ बाप ने मांगी होंगी तो और बात है। तो वहबी और कस्बी, तो नबूवत मांगने से नहीं मिलती। आप में से कोई कह नहीं सकते कि अल्लाह मुझे नबी बना दे, आजकल तो वैसे ही नहीं जायज़ होगी। तो लिहाजा यहाँ हुक्मन से मेरा नबूवत बिल्कुल नहीं है, वरना ये लगेगा कि इब्राहिम ने नबूवत मांगी थी। हुक्म से मुराद इल्म, हिकमत, फहम, सही कुव्वत फैसला। बिल्कुल ये वही दुआ है जो अल्लाह के नबी से भी एक मिलती है कि आपने फरमाया कि अरिनल अशिया कमा हिया, ए अल्लाह मुझे हर वो चीज़ वैसी दिखा जैसी कि वो है। देखिए ये है असल मांगने वाली चीज़। सूरह फुरकान तो आप पढ़ ही चुके हैं ना, लेकिन फुरकान के बाद भी अगर हमें चीज़ें उनकी असल शक्ल में नहीं दिख रही ना, तो सही नहीं हम। हिकमत क्या होती है कि मुनासिब वक्त पे मुनासिब बात करना। मुझे ऐसे लगता है हिकमत के लफ्ज़ का सबसे खूबसूरत लफ्ज़ बैलेंस्ड, जिस वक्त जो करना हो मैं वो करूं, जो बोलना हो वो बोलूं, जो खाना हो वो खाऊं। बिल्कुल ऐसे जैसे खाना पकाते हुए नमक, मर्च, चीनी, आलू जितने डालने उतने ही डालूं। खाना किस चीज़ का नाम है? क्या कोई नई चीज़ डलती है? वही चीज़ होती है, कोई हिकमत से बना लेता है तो कोई बेसमझी में बना लेता है। ज़्यादा भून लेंगे तो बेहिकमती है, मुनासिब भूनेंगे तो वो ठीक है। तो लिहाजा हिकमत असल ये चीज़ है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद गुजारे। मुझे तो ऐसे ही लगता है हिकमत के आप खुद जी रहे हैं, आपको फैसले सही करने आते हैं। यकीन करें सबसे बड़ी चोट जो पड़ती है ना साथियों पे, वो फैसलों की पड़ती है। तो कुव्वत फैसला दे और मुझे पता चले, और इसी तरह अल्लाह के अहकाम की मार्फत और अल्लाह की हदों को मानना, ये सब कुछ मेरे लिए रहे। ये हिकमत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी कि अल्लाह मुझे जीना आ जाए। आज कितने लोग हैं जो बेवकूफ़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वल्लाही वो खुद को मजबूर कह दें, वो खुद को सीधा कह दें, वो खुद को भोला कह दें, लेकिन असल में हिकमत की कमी है, क्योंकि वो दूसरों की नज़रों में सब कुछ करके इज्जत फिर नहीं पाते, क्योंकि बेवकूफ़ी के फैसलों को तो कोई पसंद नहीं करता। हाँ, लोग उनको मिसयूज़ ज़रूर करेंगे, फ़ायदों के वक्त पे उनको मानेंगे, और जब उनसे कुछ नहीं मिलेगा तो उनका हाल छोड़ देंगे। तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह में हिकमत दे। वमन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, इसमें मैंने एक पूरा दर्स किया था हिकमत क्या है। और यकीन करें कुछ लोग जो आपके अपने बड़े करीबी होते हैं, अपने रिश्तेदारों में भी होते हैं ना, तो आपको उन पर सिर्फ इसलिए तरस आता है कि उनमें हिकमत नहीं है। सारी जिंदगी कोल्लू का बैल बन के जोता ही रहते हैं, जोता ही रहते हैं, शिकवे शिकवे परेशानियाँ, शिकवे भी नहीं बेचारे करते, लेकिन असल में हिकमत नहीं होती। बच्चे से किस वक्त कैसे बात करनी है, तो बीवी से कैसे करनी है, तो शौहर को इस वक्त कैसे डील करना है। जिस औरत को हिकमत आ गई, बस समझें कि दुनिया का रिश्ता इंशाल्लाह उससे अच्छा ही निभेगा। बहरहाल अगली बात देख लीजिए, नेकों का साथ। ये क्या है इसको समझिए, मांगने वाली चीज़ है। पीछे हम पढ़ चुके हैं, हज़रत यूसुफ ने क्या दुआ मांगी जब सब कुछ मिल गया, मिस्र की बादशाहत भी मिल गई, रिश्तेदार भी आ गए, माँ बाप आ गए, ख्वाब सच होगा, तो कल हिकनी बिस्सालेहीन, अल्लाह मेरा इल्हाक कर दे नेक लोगों के साथ। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज क्या थे आपको पता है? अल्लाहुम्मा बिर रफीक आला, कि अल्लाह अब तो मैं रफीक आला से मिलना चाहता हूँ, अब मुझे नेक लोगों से जन्नतों में मिला, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। और यहाँ इब्राहिम का ये कहना कि अल्लाह मुझे नेक लोगों का साथ दे, ये इतनी हिकमत वाली दुआ है कि अल्हक्नी बिस्सालिहीन, कि दुनिया में नेक काम करने वालों से मिला दे, तो आखरत में खुद बहुत नेक लोग मिलेंगे। हर इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। हज़रत नूह का बेटा बुरी सोहबत की वजह से जहन्नमी बन गया। सोहबत बहुत बड़ी बात है, और असहाबे काहब दो चार थे, लेकिन एक दूसरे की सोहबत से जम गए, अल्लाह ने उनके काम को आसान कर दिया। तो इब्राहिम कहते हैं कि अल्लाह मुझे सालेह सोसाइटी दे, आखरत में मेरा हशर सालेहीन के साथ कर। रह गई आखरत, तो सालेह लोगों के साथ किसी का हशर होना गोया कि उसकी निजात है। जाहिर बात है ना, सब एक रैंक एक ही लॉन्च में वही लोग होते हैं ना जो पास करके सारे मरहले गुजर चुके होते हैं, तो गोया कि ये अच्छा अंजाम है। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ दुनिया में अच्छी कंपनी मांग रहे हैं और आखरत में इंजाम खैर मांग रहे हैं, बखैर मेरा इंजाम हो। और हम सब की भी यही दुआ आनी चाहिए कि अल्लाह इस दुनिया में मुझे एक अच्छे माशरे में रख, बद अखलाक फाजिर गालियाँ देने वाले और गुस्से वाले और बदतमीज़ी करने वाले लोगों से मेरी जान छुड़ा। क्योंकि किसी माशरे में जब ऐसे लोगों में इंसान गिर जाता है तो उसकी नेकियाँ भी जंग आलूद हो जाती है, चारों तरफ माशरे का बिगाड़ है। अल्लाह मुझे इससे बचा, मेरे बच्चों को बचा, और अल्लाह मुझे इस गंदगियों में एक कमल बना ले, कीचड़ में खिला हुआ एक फूल बना ले, और मैं खुद को भी साफ रखूं और दूसरों को भी साफ करूं, क्योंकि गंदगी के छींटों से भी इंसान नहीं बच पाता। तो एक सालेह इंसान दुनिया में उस वक्त तक बेचैन रहता है जब तक अपने इर्द गिर्द के माहौल को पाकीज़ा नहीं कर लेता। तो गोया कि इसमें एक दुआ भी है कि अल्लाह हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, कि अल्लाह मुझे पाकीज़ा माशरा दे, और मुझे ऐसा माशरा या तो बनाने वाला बना दे कि जो पाक हो, और नहीं है तो मुझसे हिजरत करा के मुझे ऐसी जगह पे ले जा कि जहाँ पे खैर और सारी बातें हों। चलिए, इस एक आयत में दो दुआएं हो गई। तीसरी दुआ, वज अली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन, और मेरे लिए बना दे सच्ची नामवरी पिछले लोगों में। ये है असल में कंफ्यूज करने वाली दुआ, मफहूम समझ लीजिए फिर इस पे बात कर लेते हैं। बाद में आने वाली नस्लें मेरा जिक्र खैर करें, क्या ये शोहरत मांग रहे हैं, तारीफ़ें मांग रहे हैं, सेल्फ प्रेजिंग मांग रहे हैं? हरगिज़ नहीं। इसका ताल्लुक ऊपर वाली दुआ से है। आप देखिए कि ऊपर क्या कहा कि अल्हिकनी बिस्सालिहीन, और सालिह कौन होते हैं पढ़ चुके हैं पीछे आप। अल्लज़ीना अनमता की तफसीर क्या बताई थी, अनमता अलैहिम कौन है, उलाइका याद है सूरत आले इमरान, मिनन नबीयीन वसिद्दीकीन। हाँ, तो सालेहीन कौन लोग होते हैं, इंसानों में सबसे ऐसा दर्जा कि जिससे आप बात को शुरू करें, लीस्ट, नेकियों में सबसे नीचे सालेहीन, फिर शोहदा, फिर सिद्दीकीन, फिर अम्बिया करम। नबी तो पहले ही थे, कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे नेकों का साथ दे। यहाँ एक बहुत गहरी बात है कि मैं चंद एक उलमा के ग्रुप में ही ना बैठा रहूँ हर वक्त, कोई दीन का एक ऐसा मेरे इर्द गिर्द फोबिया ना जमा हो जाए कि मैं तो दूसरों से सलाम भी ना करूँ कि ये तो आम मुसलमान है, मैं इनसे क्यों मिलूँ। नहीं, दुनिया में मुझे आम लोगों तक पहुँचने वाला बना। याद रखिए, इब्राहिम अपने माशरे में तन्हा थे, अकेले थे। एक आयत पीछे गुजर चुकी है, अव्वल मोमिनीन, पहला मुस्लिम। एक ऐसा भी दौर गुजरा था कि आप कहिए कि ज़मीन के तख्ते पे हज़रत इब्राहिम और बीबी सारा थी, इनके अलावा कोई ईमान वाला नहीं था, सब इधर उधर भटक चुके थे। तो ऐसे वक्त में सालेहीन का साथ मांगना क्या है कि अल्लाह बहुत सारे लोगों को भी नेकी दे। मैं अकेला ही ना चमकता रहूँ क्या, मैं कितना नेक हूँ, ये हमारा भी गोल होना चाहिए। चलो सारे नई सिद्दीकीन पे जाते, नई शहदा पे जाते, चलो सारे मेरे ख़ानदान के लोग सवाले तो बन जाएँ, मेरी सारी दोस्तें सवाले हाथ तो बन जाएँ। ये है असल सोच कि अल्लाह मुझे ऐसे लोगों में रख। और फिर आप देखिए कि ये जो बात कर दी कि वज अली लिसान सिदकिन, यहाँ लफ्ज़ लिसान है, ज़ुबान क्या करती है, बोलती है ना, बोलना और चीज़ है, ज़ुबान और है, लेकिन अरबी का एक असूल है किसी चीज़ की शिद्दत को बयान करना ना उस उस्फ को बोल देते हैं। यानी यहाँ लिसान कहकर बोलना मुराद है, ज़िक्र खैर, कि मेरी ज़िक्र खैर मेरी नामवरी हो जाए कैसी, सिदकिन सच्ची। बहुत ही बड़ी बात है, कैसे लिसान है सिदकिन। आप देखिए जब एक इंसान की हयात जमील होती है ना तो बाद में ज़िक्र जमील होगा, जैसा तुम जीते हो मरने के बाद लोग तुम्हें वैसा ही कहते हैं। ये मेरे बाद वाले आखिरीन जो है ना, आखिर की जमा है, जो मेरे बाद आएंगे क़यामत तक। और सिद्क से यहाँ क्या मुराद है, नंबर एक, बहुत सारी इसकी मुख्तलिफ तफसीरें हैं, नंबर एक मुझे इतना सच्चा कर दे कि मेरे जाहिर और बातिन में कोई फ़र्क ना हो, दूसरा मेरे बाद वाले लोग मेरी जो तारीफ करें वो सच्ची हो, झूठी ना हो, उनकी खुशफहमियों पे मबनी ना हो। देखिए बाज़ दफ़ा लोग लोगों की जो तारीफ कर रहे होते हैं वो बिल्कुल झूठी होती है, गुमान होता है लोगों का ये बड़े नेक हैं। आपको था कि हमारे असलाफ अपनी तारीफ सुन के कांप जाते थे, अल्लाह के नबी ने क्यों सिखाया, यार अल्लाहुम्म ला तुआखिज़नी बिमा यकूलूना वजअलनी खैरम मिम्मा यज़ुन्नूना, कि अल्लाह मुझे इनकी बातों पे ना पकड़ना जो ये कहते हैं, मुझे इनके गुमान से ज़्यादा कर दे और जो मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। बहुत दफ़ा हम लोगों की तारीफ़ें झूठी करते हैं, आप लिख के देख लें, बोलना चालना एक हफ़्ता अपना नोट करें, अक्सर हम तारीफ़ें भी करते हैं ना वो डिप्लोमेटिक होती हैं, हमें खुद नहीं पता होता। और बाज़ दफ़ा करने वाला सच समझ के कर रहा होता है, जैसे मसलन आप किसी की ज़ाहरी नेकियाँ देखते हैं, आप बड़ी तारीफ़ करते हैं, अब वो अब ज़ाहर लग भी ऐसे ही रहा लेकिन अंदर खोट है, नीयत का कोई मसला है, या आपको थोड़ा देर दिखता है उस वक्त वो बहुत अच्छा होता है, बाद में वो ठीक नहीं है, बाहर वो बहुत ज़्यादा बड़े मौलवी साहब है, घर में बेगम के साथ सख्त है, बाहर वो बड़े खूबसूरत दर्स देती हैं, घर वालों के साथ वो शौटी करती रहती हैं, तो वो तारीफ़ सिद्क तो नहीं हुई। तो इब्राहिम कहते हैं कि जो मेरी तारीफ़ करें वो एग्जेजुरेशन से पाक हो, मुबालगे से पाक हो। सिद्क क्या होता है, किस्फ की ज़िद, और किस्फ कहते हैं खिलाफ हकीकत, हकीकत से अपोज़िट। लोगों की तारीफ मेरे बारे में सच्ची तब होगी जब वो हकीकत पर मबनी होगी। देखिए सूरत आल इमरान के अंदर हम पढ़ चुके हैं आखिर से थोड़ा सा पहले कि कुछ लोग हैं जो क्या चाहते हैं, अन यहमदु बिमा लम यफअलू, हमारी उन बातों पे भी तारीफ़ हो जो हमने की कोई नहीं है, बस हमारा नाम चले। इब्राहिम बिल्कुल अपोज़िट कह रहे हैं उससे, जो मैं करता भी उस पर भी तारीफ ना हो जब तक कि वो पूरी बात सच्ची ना हो। इंसान को अपनी तारीफ़ बड़ी अच्छी लगती है, और जब उसमें मुबालगा रही हो तो फिर तो वो कहना चाहिए कि बगलों में से भी हंसी छूटती है, देखो देखो मेरी तारीफ़ें हो रही हैं, हालांकि मना है। अब देखिए कि मुंह पे तारीफ़ करना पसंदीदा नहीं, कुन छुरी से चलाना, ज़िबा करना, क्यों, तरक्की का रास्ता रुक जाता है, गलत फहमियों में इंसान मुबतला हो जाता है, लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट समझते हैं और तरक्की नहीं करते, कहते सब कुछ पता है। अब ये बात सुन के फिर वो लोग परेशान हो जाते हैं जो ये सब नहीं चाहते फिर भी उनकी तारीफ़ होती है, तो फिर उनका क्या जवाब है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह का एक कौल है, कहते हैं कि वो शख्स जो वाकई नेक हो, नंबर दो, दूसरों के लिए रियाकारी ना करे, फिर अगर लोगों में उसकी तारीफ़ हो जाए तो वो तारीफ़ उसको नुकसान नहीं देगी। इमाम गज़ाली का एक कौल है, तीन शराइत के साथ तारीफ नुकसान नहीं देती। नंबर एक, अपने आप को बड़ा और मुकाबिल को छोटा साबित करना ना मुराद हो, ठीक है, दूसरा झूठी सना खवानी ना हो, और तीसरा आखरत के फ़ायदे के लिए हो। यानी कोई मरता है ना तो उसके जनाजे पे खड़े होकर अगर लोग अच्छी बात भी करते हैं ना तो उसके लिए आपका तो सदका जारी है। एक मौके पे एक जनाजा गुजरा तो लोगों ने उस औरत की तारीफ की, तो आपने फरमाया वजबत वजबत वजबत। फिर एक मौके पे कोई गुजरा तो लोगों ने उसकी कोई बुराई का जिक्र किया तो कहा वजबत वजबत। कहा अल्लाह के नबी क्या? कहा पहली औरत पे जन्नत वाजिब हो गई और दूसरी पे जहन्नम वाजिब हो गई। तो आवाज़ खल्क नकारे खुदा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और याद रखिए इब्राहिम की ये दुआ कैसी कबूल हुई कि सनाए हसन हो। आज यहूदी नसरानी, और हैरत हुई मुझे अभी पिछले दिनों अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कि नॉर्वे में हर मज़हब वाला इब्राहिम को मानता है। बात समझ रहे हैं? यहूदी नसरानी तो है, एथियस भी बहुत है, इब्राहिम से सब मुड़ते हैं। कि अगर कल हम किसी स्कूल का नाम आले इब्राहिम रख लें तो कोई ये नहीं कहेगा ये मुस्लिम स्कूल है। क्रिश्चियंस कहेंगे ये हमारा स्कूल है, नॉर्वेजियन कहेंगे हमारा स्कूल है, और ज्यूस कहेंगे ये हमारा स्कूल है, और मुस्लिम्स का तो है ही है। ये फ़र्क है, ये होती है मेहनतों वाली ज़िंदगी का हदिया, लिसान सिदक़। दुनिया में बेनियाज हो जाए। जिस वक्त अपनी कौम और बिरादरी के मुंह लगे थे, कोई लोगों को अच्छा लगा होगा? उस वक्त तो अच्छा ये था कि माशाल्लाह क्या रस्म है, क्या सजाया है आपने, क्या अच्छे काम कर रहे हैं, तो लोग वाह इब्राहिम कितना अच्छा है। उस वक्त इब्राहिम बुरे बने कि नहीं बने? बने। जो बनता है बाद में उसकी तारीफ होती है। मैं तो जब दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ तो मेरा दिल पसीज जाता है। असल ज़िंदगी, बाकी तो हम सिर्फ बेगार की गुजार के जा रहे हैं दुनिया से। तो ज़रूरत है इस बात की वो ज़िंदगी बसर करो कि जिसके बाद हकीकत में इंसान को एहसास हो कि करने का काम करके। कितने देर लोगों की तारीफें होंगी, आप लिख के देखें अपने लिए। जितने भी मैं गलत काम करती हूँ उसमें से अक्सर काम मैं लोगों की तारीफ हासिल करने के लिए या उनकी तनकीद से बचने के लिए करती हूँ। और यही है पीपल कॉन्शियस होना। पीपल कॉन्शियस होना ये वो काम है जो इंसान को मुश्किल लगता है, और इस चुंगल से आप एक दफ़ा आज़ाद हो जाए। मैंने देखा है इसके लिए टाइम बहुत लगता है। सबसे आखिरी बुत जो इंसान के दिल से कुरान पढ़ने के भी कई साल बाद निकलता है, बल्कि पढ़ाने में निकलता है, अल्लाह जानता है वो लोगों की नज़रों में मैं कैसा हूँ। ये पहनेंगे तो ऐसे लगेंगे, ये खाएंगे तो ऐसे लगेंगे, ये करेंगे तो वैसे लगेंगे। आज अपने दिल से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे लोगों की बातों से बेनियाज कर दे। देखिए आप, मेरा दिल कह रहा है मैं रोऊं, मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन हम सब अपने इस हाल पे रोएं। लोगों की तारीफें, और उन लोगों की तारीफें जिनका अल्लाह की नज़रों में कोई मुकाम ही नहीं है, मुझे क्या देंगी? सोचिए आप इस जुमले को लिखें, मेरी तारीफ़ कौन करता है और कब करते हैं, और जो मेरी तारीफ़ करते हैं क्या वो भी काबिले तारीफ़ हैं? भाभी आंटी अच्छा वह बहन ये करते थे खिदमत और तारीफ़ें कराते थे, वट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट? वल्ला ही उनकी तारीफ़ें ले जो खुद भी काबिल तारीफ़ है। मैं मिसाल देती हूँ आपको, सारे शहर के चोर अगर आपकी तारीफ़ करने लग जाए आपको खुशी होगी? सारे जानी अगर आपकी तारीफ़ करें अच्छे लगेंगे आपको? और अगर उसी शहर का एक बड़ा अल्लाह वाला शख्स, या चलें मिसाल देती हूँ, हम किसी के ज़ाहिर पे क्यास नहीं करते, इमाम काबा अपने वक्त के एक जुमला आपके बारे में कहीं बोल दें, कौन सा अच्छा है? तो जब इमाम काबा का जुमला इतना खूबसूरत है तो रब्बे काबा की तारीफ़ें कैसी होंगी? यकीन करें अब ये आखिरी पा रहे हैं, अपने आप को लोगों की जकड़बंदियों से निकाल दें और इस रब के कुरान से जुड़ जाएं। आपके डेथ बेड पे अगर आपकी सारे लोग तारीफ़ें करते रहेंगे ना, आपकी ज़िंदगी में एक लम्हे का इजाफा नहीं होगा। और आप बीमार होंगे ना, अल्लाह ना करे कभी भी, सारे ख़ानदान के लोग आपकी तारीफ़ें करें, बड़ी अच्छी बच्ची है, बड़ी नेक लड़की है, बड़ी अच्छी औरत है, लेकिन आपकी बीमारी आप खुद भुगतेंगे। लेकिन न जाने क्यों बार बार हम इस चीज़ से पीछे होते हैं, हमें अपनी तारीफ़ें इतनी अच्छी लगती हैं। और यकीन करें तारीफ़ चाहने वाले को कभी नहीं पता होता कि मुझे अपनी तारीफ़ अच्छी लगती है। एक वक्त आता है कि बंदे को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, फिर एक वक्त होता है कि उसको अपनी तारीफ बस कोई करे ना करे तो कुछ नहीं होता, और एक वो वक्त आता है कि जब कोई आपकी तारीफ करे तो आपको झुंझलाहट होती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ है रब की। अगर मेरे में भी कोई खूबी है तो उस रब को क्रेडिट दो, उसके साथ जुड़ जाओ, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी क्या है। और कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात दुनिया में से गुजरी हैं इस वक्त, आप ईस्टर्न वेस्टर्न हीरोज़ के नाम लिखें, गुलकारों के लिखें, अदाकारों के लिखें और साइंटिस्टों के लिखिए, और फिर हज़रत इब्राहिम की इस दुआ को मांगें कि वजअली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन। आपको तक अल्लाह के नबी ने दीन इस्लाम के बहुत सारे रिचुअल्स को हज़रत इब्राहिम से जोड़ा। पहले तो ख़ुद का कहना आला मिल्लत इब्राहिम, ये दीन के अबीकुम इब्राहिम, कुर्बानी की बात की का ये सुन्नत तो अभी इब्राहिम, हज के रिचुअल इब्राहिम, सफ़ा मरवा का चलना भागना इब्राहिम, जमजम इब्राहिम की याद, क्या क्या यादगारें छोड़ गए। हमें कौन याद करेगा कल जाएंगे तो? चार बच्चे याद करेंगे आपके सिर्फ, और कब तक? जब उनकी शादियां नहीं हो जाती, जब तक घरदारियों में नहीं पड़ते, और जब तक उनके बच्चे नहीं हो जाते। आप कितना याद करते हैं अपने नाना और दादा को? चले नाना दादा को देखा होगा तो याद करते हैं, पर दादा पर नाना और उस पे चढ़ दादा पर ना, किसको याद करते हैं? आपको नाम याद है अपने पर नाना का, पर दादा का नाम याद है? कैसे कभी हमारे मुंह पे नाम आया? बल्कि मुझे तो रोना आता है, मैं तो कभी दुआ में भी नहीं याद है। जब पढ़ेंगे रब्बे रहम हुमा, तो माँ बाप सास ससुर और उस्ताद, बहुत हुआ तो फिर नाना नानी दादा दादी, और वो भी कब आता है? मैं सच कहूँगी, अपने बाप का सोचें तो फिर आता है, अल्लाह उनके माँ बाप को भी बख्श दे। देखा जो नहीं, उनको देखा नहीं, छुआ नहीं, हमने अपने दादा दादी को नहीं देखा, बस अब्बू की जवानी में दोनों चले गए। कोई तसव्वुर ही नहीं है दादी का दादे का, क्या प्यार होता है, क्या मोहब्बत होती है। बस बाप के मुंह से कभी सुना हुआ है तो वो याद आता है, तो अपने दादा दादी के लिए दिल एकदम हिकती है कि एक दफ़ा रो के उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप के लिए दुआ किया करो। यकीन करें, हम तो इतने खुद प्रस्त लोग हैं, अपने बच्चों के बच्चों को याद करेंगे? कहते हैं अल्लाह पोते भी दिखा दे, पोते की भी शादी मेरी ज़िंदगी में हो जाए, उनकी भी अगली भी नस्ल अगली पीढ़ी भी देख जाऊँ, पिछले नहीं याद आते। लेकिन इब्राहिम वजह लीली सहाना सिदकिन फिल आखरीन, दुनिया में बस यही आखिरी चीज़ चाहिए कि लोग मुझे बुरा ना कहें, जहाँ से उठ के जाऊँ लोग ये ना कहें खसकम जहाँ पाक, जान छूटी मरे सो लाखों पाया, जान बची सो लाखों पाया। अपने ऊपर लेके सोचें, किस इंसान से आपका वास्ता पड़े और फिर आप रुख्सत हो वहाँ से, क्या पीछे से कहते हो कि शुक्र है जान छूटी। देखिए, एक इंसान होने के नाते इंसान थक जाता है दूसरे इंसान के साथ, लेकिन कभी को आपको बुरा नाम ना दे, आप किसी का घर किराए पे लें और छोड़ के जाएं साल में कि रोएं, यहाँ तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें वो पैसे देने पड़ेंगे। कभी अपने मुल्कों में देखा करें, कहते हैं तोड़ो किराए का घर, अब जा रहे हैं इनकी टूटियाँ भी उतार के ले जाओ, कोई पूछने वाला जो नहीं है। हमें कितने लोग याद करेंगे, और अल्लाह ने इसका जवाब दिया है। सूरह सफ़ात आयत 108 से 110 का तर्जुमा खुद लिखिएगा अपने नोट्स में। अल्लाह कहते हैं तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने फिर इब्राहिम का जिक्र खैर आखिर में छोड़ दिया, पीछे तक छोड़ दिया, सलामुन अला इब्राहिम। तो अल्लाह दुआएं कबूल करता है, ये अल्लाह के लिए होता है। जितना अल्लाह के लिए कोई काम करेंगे, अल्लाह लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत डालेगा। अपने काम से काम रखें, अल्लाह खुद लोगों के दिल में मोहब्बत डालेगा। आप कहते हैं तोहफे दो, खाने खिलाओ, बैठो, ईद पे पूछो, शादी पे पूछो, ससुराल को पूछो, उसको पूछो, इसको पूछो, यकीन करें अल्लाह के काम आप करें, फिर देखिए जो अल्लाह आपको प्यार दिलाएगा। यानी मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम अपनी बच्चियों को यही पैगाम दे के भेजते हैं ना कि ज़रा खूब खातर खिदमत करना, फिर ससुराल वाले बड़े खुश होंगे। नीयत ही गलत दे के भेजा, कहाँ खुश होंगे आप? अच्छी सोचिए कि तुम अल्लाह को खुश करने के लिए उनको खुश रखोगी, और जो ठीक काम है उसको करना है, जो गलत है तो वो तो उनकी भी नहीं माननी। अल्लाह खुद इज्जत देगा, प्यार भी देगा, मोहब्बत देगा। और यकीन करें अल्लाह के रास्तों में निकलने वाले कभी भी पीछे नहीं होते। बहुत ही यानी पर्सनल बात है, बहुत पर्सनल बात है, लेकिन पता नहीं क्यों इस वक्त दिल पे आ रही है, ज़ुबान पे। कई साल से हमने छोड़ा हुआ है ज़हरा के अपनी जगह को, और यही सोच के कि बंदों को फ़ायदा हो, तो मेरे दिल में अक्सर इसका गिल्ट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड है वो जितना भी मुमकिन होता है वो बीच में चले भी जाते हैं, मिलते भी हैं, और मेरी सास की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि उसको साथ लेकर आऊँ। तो मेरी उनसे कल परसों बात हुई ना, यानी मैंने दिल से सोचा कि अगर दुनिया में किसी को सास मिले तो मेरी सास जैसी मिले, और बाकी रिश्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाद में भी सोच रही थी कि उनको कोई गिला नहीं, हालांकि उनका दिल करता है हम उनके पास हों। बेटा जो काम कर रहे हो वो करो, मैंने कहा मामा आपका उसमें हमसे ज़्यादा हिस्सा है। मैं ये दुआ करती हूँ कि अगर कुछ मुझे अल्लाह दे तो उससे बहुत ज़्यादा आपको देगा। क्यों? इसलिए कि आप मेरे से बड़ी कुर्बानी दे रही हैं और हमें इसका एहसास है। तो अब मुझे तो इतना मौका भी नहीं मिला कि मैं उनके पास बैठूं, लेकिन दिल में जज्बे बड़े खूबसूरत हैं। तो मैंने बाद में बहुत सोचा और मैंने इतने दिल से उनके लिए दुआ की कि आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। कि मुझे ऐसे लगा ये दुनिया की सबसे अजीम औरत है जो कभी गिला भी नहीं करती, शिकवा भी नहीं करती, बल्कि बस उनको यही है कि बस दुआ करो अल्लाह हमारा खात्मा अच्छा करे। उनको नहीं चाहिए कि आके हमारे बर्तन दो, हमारे कपड़े दो। आप करें, आप खुशी से करें, जब पास हों तो ये करें, लेकिन आप अल्लाह के काम करें। मैं अक्सर सोचती हूँ ये सारे खूबसूरत रिश्ते मुझे क्यों मिल गए। शायद अल्लाह मेरे जैसे बेकार बंदे को ये कहता है कि तुम मेरा काम कर लो तो दूसरों के दिल में मैं डाल दूंगा। कई बुरे भी कहते होंगे मुझे, कईयों को दुख भी देती होंगी मैं ये नहीं कहती कि सारे मेरे से बड़े खुश हैं, लेकिन ये मेरा यकीन है कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए काम करेंगे ना, आज अगर आपके घर वाले दुखी भी हैं ना, तो वो बाद में अकेले में बताएंगे मेरी बीवी है बड़ी अच्छी, काम बड़े अच्छे करती है, वो पढ़ रही है। आपके शोहरों के दिलों में आपकी इज्जत बढ़ती जा रही है, आपको पता है कि नहीं पता, कसम नहीं खाती, लेकिन ये सच है। शर्त है क्या आप अल्लाह के काम करती रहें। आज नहीं वो कुछ साल के बाद ज़रूर आपको सर्टिफिकेट देंगे, जब मर्जी दें, कि तू मेरे से तो अच्छी ही रही। तो लिसान सिदकिन के लिए सच्चा दिल और सच्चे होने के लिए इस दुनिया को पीछे डालना पड़ेगा। कितने तकाजे हैं हमारे साथ, और ये छोटी छोटी कुर्बानियाँ जिसका हम ऐसे ही जिक्र कर देते हैं ना, वल्लाही ये है आपका क्रेडिट अल्लाह के यहाँ। कहना इसकी वजह से इसकी खैर भी मेरे स्कूल को दे दे, अगर कोई ये इखलास अच्छा है तो इनका ये फलां प्रोजेक्ट अच्छा हो जाए जिसके लिए मैं फिर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। अच्छा अल्लाह इनका ये काम आसान कर दे, ये मैंने छोटी सी कुर्बानी क्या चंद दिन की जुदाई है मैं सह लूँगी, तू कर दे। और दुनिया के बाद वजाल नीम वरासती जन्नत नाई, दुनिया से तो बस यही चाहिए। देखिए यहाँ दुनिया की लिस्ट ख़त्म हो गई है इब्राहिम की, माल बेटा औलाद शोहरत घर कोठी बंगला, दिखा दुनिया से बस ये चाहिए। दुनिया में हुक्म, नेक लोगों का साथ और मेरे बाद जिक्र खैर, और आगे के लिए बस मुझे वारिस बना दे नेमतों वाली जन्नत का। ये एक ईमान वाले की दुआएं। किधर हैं ये दुआएं आज हमारे दिलों में और कहाँ हम मांगते हैं कि अल्लाह बस वहाँ बस जन्नत दे देना। जो बच्चे लाखों पाया, जो बच्चे लाखों पाया, और अक्सर यही बात मैंने खुद अपनी सास के मुंह से भी सुनी है, वो यही कहती हैं बेटा ये दुआ करो कि अल्लाह मुझे बख्श दे। कभी मैंने कहा ना ये सवाब आपको मिले, बेटा ये दुआ करो कि अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझे जन्नत दे दे, बस यही बहुत है। वो अपनी शान और अपने मुकाम से जो मर्जी दे। और वरासती वारिस की जमा है, वारिस जैसे साहिर की जमा सहरा या तालिब की जमा तोलबा, इसी तरह से आप देखिए जन्नत ही नईम नेमतों वाली जन्नत। ये नईम क्यों कह दिया इधर, जन्नत तो समझ आता है, इसलिए कि अल्लाह के रास्ते के कामों में बहुत सारी दुनिया की नेमतें पीछे डालनी पड़ती हैं। तो कल अल्लाह नेमतें वहाँ दे देना। और आप जन्नत में जाके इब्राहिम से ज़रा पूछिएगा कि इब्राहिम जब ये दुआएँ मांग रहे थे उस वक़्त दिल की हालत क्या थी। हम भी मांगते हैं जन्नत, वो जन्नत ऐसी है साथ ही वो शोकेस में चमकती हुई चीज़ें हमारी आंखों में होती हैं, चमकते दमकते फुदकती हुई, और साथ कहते वो भी अभी दे दे, अभी वो भी दे दे, हाँ जन्नत भी दे देना। और ख्वाहिशें दुनिया की जन्नतों की ज़्यादा होती हैं इल्ला माशाल्लाह। तो ईमान वाले की निगाह बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊंची नेमतें होती हैं उसके पास, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का सौदागर होता है, यकीन करें। वो छोटी बात तो सोचता ही नहीं है, छोटी बात छोटे लोग सोचते हैं। आप देखिए दुनिया की जिसको आप कह सकते हैं ना पीक वाली चीज़ें मांगी हैं, ब्रांडेड आम लोग नहीं मांगते, और जन्नत की भी नेमतें मांगी हैं। आम लोग ख्वाहिश करें बच्चा हो जाए, घर हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे ये हो, ये खुद ही हो जाएगा। हदीस में आते जिसको कुरान पढ़ने ने दुआ मांगने से रोका, मसरूफ़ी इतना या सोचे इतनी है, तो अल्लाह उसको मांगने वाले से भी ज़्यादा अता करता है। इब्राहिम ने अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, पहले बिरादरी से टक्कर ली, जो बचपन में माँ बाप अजीज़ होते हैं बिरादरी की ज़रूरत होती है, टक्कर ले ली। जवान हुए तो बीवी बड़ी अजीज़ होती है, तो बीवी को छोड़ना पड़ा, वाक़यात आते हैं, इस वक्त ज़रूरत नहीं है डिटेल की। ज़रा बूढ़े होने लगे तो औलाद बड़ी अजीज़ होती है, तो बुढ़ापे में औलाद को छोड़ दिया। और अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह बस मुझे इन सारी कुर्बानियों के बाद अपने पास बुला ले, अच्छा काम करा, और जब मैं अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में खूबसूरत काम कर रहा हूँ तो मुझे अपने पास बुला ले। अल्लाह के नबी की दुआएं हैं कि अल्लाह जिस वक़्त मैं बेहतरीन ईमान की हालत में हूँ उस वक़्त मेरी जान ले ले। मौत तो आनी है, बस उस वक़्त आए जब तू मुझसे इतना राज़ी कि मरते या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जिला रब्बी की राधियत मरती। और देखिए तड़पने वाला दिल वग़फिर लिया भी इन्नहु काना मिनद दालीन, और मेरे वालिद को बख्श दे, यकीनन वो गुमराह लोगों में से। ये है तड़पने वाला, पीछे पड़ चुके हैं, बाप क्या सोचते हैं उनके बारे में। लारजुमन्न का या इब्राहिम, ए इब्राहिम तुझे पत्थर मारूंगा। कुफर इस तरह मोहब्बतों को छीन लेता है, लेकिन इब्राहिम कौन थे, पीछे पड़ चुके। अल्लाह मुनीब, आहें भरने वाले, झुकने वाले, तड़पने वाले, बखावली कैफियत थी, नरम दिली की अलामतें। सूरत का शुरू याद कर लीजिए, लाल का बाख़ियन, ए नबी आप तो तड़पेंगे, कहीं कौमे लूत के लिए तड़प रहे हैं। ये है असल में हुस्न अखलाक, बुराइयाँ सह कर अच्छे जवाब दो। अच्छों के साथ आप अच्छे हुए तो क्या बड़ी बात है, बुरों के साथ अच्छे होंगे तो फिर आपकी कीमत अल्लाह के पास बनेगी, फिर बात बनेगी। अब सवाल पैदा होता है कि इब्राहिम को तो कहा गया था कि आप मुशरिक बाप के लिए दुआ ना करें, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि ए अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, और साथ ही साथ देखे ये भी कह रहे हैं कि इन्ना हुकाना मिन दालीन। वो भटका हुआ है, यहाँ दालीन से मुराद बाप की बेइज्जती नहीं मुराद, हकीकत मुराद है कि अल्लाह मुझे पता है वो सीधे रास्ते से हटा हुआ है, बस तो अपनी रहमत से इनको बख्श दे। और हाँ अल्लाह वला तुख्सिनी यौम युबअसून, मुझे क़्यामत के दिन रुसवा ना करना। ए अल्लाह क़्यामत का दिन मेरे लिए रुसवाइयों का दिन ना हो। इशारा है कि अल्लाह बेटा हो इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिसको सबसे पहले जन्नत की खिल्लत पहनाई जाए और बाप आग में जाए, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। तो अल्लाह ताला ऐसा ना कर, मेरे साथ ये ना मामला करना मेरे बाप के बारे में। हदीस सुना देती हूँ, इंशाल्लाह आपको ये सारी बात साफ निकलेगी कि ये सारा कुछ कैसे होगा। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, क़्यामत के दिन हज़रत इब्राहिम की अपने वालिद से मुलाकात होगी। आप देखेंगे कि इसका मुंह जिल्लत और गर्दोगुबार से आलूदा हो रहा है, और रिवायत में है कि इस वक्त आप जनाबे बारी ताला में अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार तेरा मुझसे कौल है कि तू मुझे क़्यामत के दिन रुसवा ना करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, सुन ले, जन्नत तो काफिर पर कतन हराम है, यानी बात है लेकिन तेरा बाप जा नहीं सकता जन्नत में क्योंकि वो काफिर था। और रिवायत में कि इब्राहिम अपने बाप को इस हालत में देख कर फरमाएंगे कि देख मैं तुझे नहीं कह रहा था कि मेरी नाफरमानी ना कर। बाप जवाब देगा, अच्छा अब मैं तेरी फरमाबरदारी करूँगा। आप अल्लाह ताला की जनाब में अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार तूने मुझसे वादा कर रखा है कि उस दिन मुझे रुसवा न फरमाएगा, अब इससे बढ़कर और क्या रुसवाई होगी कि मेरा बाप इस तरह रहमत से दूर है। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे खलील अलैहिस्सलाम, मैंने तो जन्नत को काफिरों पर हराम कर दिया। फिर फरमाएगा, इब्राहिम देख तेरे पैरों तले क्या है। आप देखेंगे तो एक बदसूरत बिज्जू कीचड़ पानी में लुथड़ा खड़ा है, जिसके पाँव पकड़कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। हकीकतन यही इनके वालिद होंगे जो इस सूरत में कर दिए गए और अपनी मुकर्रर जगह पर पहुंचा दिए गए। बिज्जू, गंदा जानवर, यानी बाप जाएगा आग में ही, लेकिन इब्राहिम को जिल्लत से बचाने के लिए शक्ल बदल दी कि लोगों को ना पता चले ये इब्राहिम का बाप है। अब बताइए किसका नसब किसके काम आएगा और किसका खानदान किसके काम आएगा। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, फिक्र कर लो आज ही उस दिन की, यौम ला यनफऊ मालुम वला बनून, जिस दिन न माल काम आएगा ना बेटे। क्या काम आया किसी के, क्या आज़र के काम उनका बेटा आया और माल काम आया उसकी दौलत के। आपको पता है आज़र कितना अमीर था, बादशाह के दरबार में वो एक आलम ओहदे पे था, आप कह लीजिए आज की ज़ुबान में वज़ीर था अपने वक्त का। माल काम नहीं आया, सारी ये आयत उसके टेक्स्ट में आज हम सबके सामने, ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे, कुछ भी तो उस दिन काम नहीं आएगा। सोचिए तो सही ज़रा, हाँ मगर इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, सिवाय इसके जो आए अल्लाह के पास कल्बे सलीम लेकर। और आज फिर हम खुद ही पूछेंगे अपने आप से कि दिल सलीम हुआ कि नहीं। अभी जो बात हुई है इस पे कुछ शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम।
जी, तो बहुत ज़्यादा मुकम्मल तरीके से अल्लाह ताला की मार्फत इन आयात में नजर आई, एक के बाद एक नाम और उनकी एक्सप्लेनेशन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रवैये से।
जी, इब्राहिम के रवैयों से अल्लाह ताला की मार्फत दिखी आपको। जी, और इधर से आप
दो बातें, दो नंबर एक, बहुत सोच समझ के दिले शिक्र करने चाहिए और बहुत सोच समझ के तारीफ करनी चाहिए।
जी, सोच के तारीफ करें और सोच से शिकवे करें, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सीखी आपने, शाबाश। जी, और इधर से आपने क्या सीखा?
सिंसेरिटी बिल्कुल प्रिस्टीन और प्योर अल्लाह सुब्हानहू अल्लाह की तरफ होती है और एक्शन की तब मिलती है। ये आयत 87 जो रब्बी
हबली, अंदर सच्चे हों। देखिए, अल्लाह का चुनाव जो है ना, ये आगे बढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। इब्राहिम की ज़ुबान में लुकनत थी, अल्लाह ने कबूल कर लिया, बुला लिया अपने काम के लिए। कोई खूबी नहीं, हज़रत मूसा स्याह रंग के थे, बुला लिया, बिलाल स्याह हबशी थे। इल्ला मनत अल्लाह बिकल्ब सलीम, इस पे बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जी, आप जो अच्छे हैं सिर्फ उनके साथ अच्छा नहीं होना, जो अच्छे नहीं उनके साथ भी अच्छा होना है इंशाअल्लाह ताला। ये कहती हैं कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्फत इन इंग्लिश, अल्लाह को पा लेना, रिकग्नाइज करना, क्लोजनेस टू अल्लाह, लव ऑफ अल्लाह, ठीक है। ये लिखती हैं कि आई नीड टू थिंक अबाउट हु प्रेजिस मी, हाउ एंड वेन, एंड आर दे ट्रूली प्रेज वर्दी, डू एक्शन एंड अटेन प्रेज फ्रॉम द मोस्ट प्रेस्ड। शाबाश, बहुत अच्छी बात लिखी। कहती हैं कि मैंने आज ये सीखा है कि मैंने अब ये सोच, मेरी तारीफ कर रहा है और किस बात पर कर रहा है, तो मुझे लोगों की तारीफ़ों से बेनियाज हो के सबसे ज़्यादा तारीफ वाले रब की तारीफें चाहिए। जी, आप
इनका रुतबा इतना ऊंचा था मगर इनकी आदतें, दुआएं इतनी आजी वाली है कि मैं इनको याद कर दूँ।
याद नहीं करना इसको, इन दुआओं को अपने दिल की धड़कन बनाना है, और इनके बगैर सच्चाई मिलती भी नहीं। मैंने देखा हमारे अंदर कोई खूबी नहीं होती, अल्लाह अच्छी दुआएं मंगवा के हमारे अंदर खूबियाँ पैदा करा देता है। जी, आप इधर से
दुनिया में आम लोगों तक पहुँचने वाला,
आम लोगों तक पहुँचने वाला हमें बना दे अल्लाह ताला।
रब्बी हबली हुक्मन वअल्हिक्नी बिस्सालिहीन واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون